हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात से लेकर अगली सुबह तक शिविका के दिमाग में करण की कई बातें गूंजती रहीं। करण ने उसे धन्यवाद कहा था क्योंकि उसे लगता था कि शिविका उस पर पूरा विश्वास करती है और कहीं ना कहीं शिविका उस पर पूरी तरह भरोसा भी करती थी। लेकिन बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आता रहा। जब शिविका ने करण को ऑफिस बिल्डिंग से किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था और करण ने उस लड़की को गले लगाया था, वो उस लड़की के साथ बहुत खुश और सहज दिख रहा था। इससे पहले जब शिविका ने इस बारे में पूछा था तो करण ने कहा था कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। शिविका चाहकर भी ये बात नहीं भूल पा रही थी। भले ही उसने अपनी और करण की शादी को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन वो बार बार अपने हाथ में पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग देखती रहती थी। पता नहीं क्यों, इस बात का जवाब उसे भी नहीं पता था। इन सब सवालों के साथ शिविका काव्या को गले लगाकर उसके कमरे में ही सो गई। काव्या पहले ही सो रही थी। प्री स्कूल में पहले दिन के बाद वो पूरा दिन ऑफिस में शिविका और करण के साथ थी, इसलिए वो छोटी बच्ची बहुत थक गई थी। लेकिन घर पर बोर होने से वो शिविका के साथ रहने में खुश रहती थी। ये बात शिविका को पता थी, इसलिए वो कभी कभी उसे ऑफिस में अपने साथ रहने के लिए बुला लेती थी। दूसरी तरफ ऋषभ अपने कमरे में था और आज वो कहीं नहीं गया था। उसका मोबाइल फोन बजता है और इस बार उसे अनजान नंबर से कई सारे मैसेज आते हैं। उसे ये नहीं पता चल पाया कि वो मैसेज किसी लड़की के हैं या लड़के के, लेकिन उन मैसेज में बहुत कुछ अजीब लिखा हुआ था। वे कोई सामान्य मैसेज नहीं थे, वे ऐसे मैसेज थे जैसे कोई लड़की या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या पार्टनर को रिझाने के लिए भेजती है। ऋषभ इस वक्त ज्यादा नशे में नहीं था। मैसेज की ट्यून बजते ही उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और मैसेज ओपन करके पढ़ने लगा। हेलो हैंडसम, हाउ आर यू? वाना मीट टुमारो? एक्चुअली मैंने तुम्हें कल नाइट क्लब में देखा था और सच कहूँ तो मैंने तुम जैसा एटीट्यूड वाला इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग तुम पर ही अटक गया है। मिलना चाहोगे मुझसे? वैसे तुम्हारे लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ, लेकिन तुम बता देना तुम किस समय और कहाँ मिल सकते हो। आई विल डेफिनेटली बी देयर। वो सारे मैसेज पढ़ते हुए ऋषभ को गुस्सा आया और उसने बेबसी से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने बदले में सिर्फ एक रिप्लाई टाइप किया, हू द हेल आर यू? आई एम जस्ट योर एडमायरर। इससे ज्यादा कुछ जानना हो तो मिलकर ही बताऊंगी। मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखो, हम जिसे पसंद करते हैं ना, उसका नंबर या उसके बारे में कोई भी जानकारी निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारे पीछे तो कितने सारे लोग हैं, तो बस इतना समझ लो हम भी उनमें से एक हैं। भीड़ में तो हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं और सच कहूँ तो मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं। इसलिए मुझे मैसेज करना बंद करो और चुपचाप बताओ कि मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें, नहीं तो मैं ही तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। ऋषभ ने बहुत ही एटीट्यूड से एकदम रूडली जवाब दिया। आई एम रियली लाइकिंग योर दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। कहाँ मिलता है आजकल लड़कों में ऐसा एटीट्यूड देखने को? बस इसी से तुमने सबको अपना दीवाना बना रखा है और सामने से किसी को अप्रोच भी नहीं करते। उस लड़की का मैसेज आया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नाउ जस्ट गो टू हेल। ऋषभ ने गुस्से में इतना टाइप किया और फिर उसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो अपने आप से बातें करता हुआ बोला, लगता है नंबर बदलना पड़ेगा। इतना बोलते हुए ऋषभ ने बिना देखे ही लापरवाही से अपना फोन साइड में फेंका, जो बेड से नीचे गिरकर टूट गया। ऋषभ ने उस टूटे हुए मोबाइल फोन की तरफ देखकर कहा, ओहो, सिर्फ नंबर ही नहीं, अब तो मोबाइल भी बदलना होगा। लेकिन उसके लिए दी से बात करनी होगी, क्योंकि डैड ने तो मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक और अकाउंट फ्रीज करवा लिए हैं। ऊपर से उनकी ऐसी शर्तें, वो तो मैं कभी नहीं मानने वाला। कोई बात नहीं, वैसे भी शिविका दी को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसने बहुत ही लापरवाही से कहा और फिर अपने दोनों हाथ सर के नीचे करके बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगला दिन शिविका को आज एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना था। उस क्लाइंट को पहले ही शिविका की कंपनी के डिज़ाइन पसंद आ गए थे, जो शिविका ने उन्हें पिछले हफ्ते मेल किए थे। लेकिन फिर भी वो एक औपचारिक मीटिंग चाहते थे, लेकिन ऑफिस में नहीं। इसके लिए उन्होंने शिविका को लंच डेट पर बुलाया था। शिविका को रात में ही ये मेल मिला था, इसलिए वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाई थी। सुबह ऑफिस आते ही वो करण के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन करण वहाँ आते ही अपने काम में लग गया और वो सबसे पहले शिविका से मिलने भी नहीं गया। शिविका को 2 बजे लंच मीटिंग के लिए निकलना था और दिन के 12 बजे तक करण उसके केबिन में एक बार भी नहीं आया, तो शिविका खुद ही केबिन से निकलकर बाहर आई। उसने देखा कि करण अंकिता से किसी मामले पर चर्चा कर रहा था और वे दोनों साथ में बात करते हुए काफी मुस्कुरा रहे थे। ये नज़ारा शिविका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, मिस्टर करण, क्या आप भूल गए हैं कि इस ऑफिस में आप किस पद पर हैं? शिविका की तेज आवाज सुनकर करण ने एकदम से हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिविका ने आज तक उससे इस तरह तेज आवाज में बात नहीं की थी। करण के साथ साथ अंकिता और वहाँ आसपास के बाकी स्टाफ का ध्यान भी शिविका की तरफ गया। करण ने अंकिता से कहा, तुम ये देखो मैं अभी। हाँ हाँ जाओ, लगता है कुछ तो गलती की है तुमने और अब सारा गुस्सा तुम पर निकलने वाला है। ऑल द बेस्ट, अंकिता ने करण के पीछे से धीमी आवाज में कहा, जिसे करण ने सुन लिया। वो शिविका की तरफ आता हुआ बोला, यस मैम, और मुझे अच्छी तरह याद है मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपना काम ही कर रहा था। एक्चुअली वो मैं कुछ सीख रहा था जिसके बारे में मुझे नहीं पता है और अंकिता एक्सपर्ट है डिजाइंस में, तो मैंने सोचा कि उससे कुछ डाउट क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें काम सीखने के लिए सैलरी नहीं देती, काम करने के लिए देती हूँ, इसलिए तुम ऑफिस में आते ही सबसे पहले मेरे केबिन में आया करो और मुझसे पूछा करो कि क्या मुझे कोई ज़रूरी काम है, और अगर मुझसे तुमसे कोई ज़रूरी काम ना हो तभी तुम इधर उधर जाया करो, लेकिन ये इस तरह से, शिविका ने फिर से उसी तरह गुस्से में कहा। उसकी ये बातें करण को बहुत दुख पहुँचा रही थीं, लेकिन फिलहाल सबके सामने करण उससे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी गलती मानते हुए कहा, ओके आई एम सॉरी मैम, बट अभी कोई जरूरी काम है क्या? करण ने इस तरह नरमी से बर्ताव किया। इसे इस तरह देखकर शिविका को तुरंत ही अपने चिल्लाने पर गलती का एहसास हुआ। वो भी अब अपनी आवाज धीमी करते हुए और टोन नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ बहुत ही जरूरी काम है, अंदर आओ केबिन में। इतना बोलते हुए वो तेजी से केबिन में वापस चली गई और फिर उसके पीछे ही करण भी केबिन के अंदर चला गया। उन दोनों के वहां से जाते ही इस बात पर जोर शोर से चर्चा होने लगी। निधि ने कहा, मुझे तो लगता था कि हम पुराने एम्प्लॉयज पर ही मैडम का गुस्सा निकलता है, लेकिन आज तो करण पर भी। पूजा ने उसके बात पर कहा, हाँ लेकिन करण ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की, फिर भी दिव्या ने उस पर इस तरह से चिल्लाया, इट्स नॉट फेयर। तभी अंकिता वहां आते हुए बोली, हाँ मुझे भी यही लगा था कि सिर्फ हम लोग ही निशाने पर हैं, लेकिन आज तो बेचारा करण भी, भगवान बचाए उसे मैडम के गुस्से से। जतिन उन सब लड़कियों के बीच बोला, अरे लेकिन मुझे तो लगता था कि ये करण मैडम का फेवरेट हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो पूरी तरह उस पर निर्भर रहने लगी थी और वे दोनों काफी समय साथ में बिताते हैं, साथ ही मैडम को उसका काम भी पसंद आता है।
उसकी ये बात सुनकर सारी लड़कियों ने एक साथ उसकी तरफ घूर कर देखा। कहीं ना कहीं जतिन ने जो कहा वो सच था और सारी लड़कियां कभी ना कभी इस बात को नोटिस कर चुकी थीं, लेकिन फिलहाल वे इस बात को नहीं बोलना चाहती थीं क्योंकि उनमें से ज्यादातर का करण पर क्रश था, लेकिन करण उन्हें भाव नहीं देता था। दिव्या भी वहां बैठी हुई उन सबकी बातें सुन रही थी और उसने एकदम आखिर में कहा, इस गुस्से की वजह मुझे तो कुछ और ही लग रही है। उसने इस तरह सस्पेंस क्रिएट करके ये बात बोली तो सभी उसकी बात पूरी करने के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगे, और दिव्या ने जब सबकी नजरें अपनी तरफ नोटिस की तो एकदम उन सबको अपने हाथ दिखाते हुए बोली, अरे अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं है। इतना बोलते हुए दिव्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, तो बाकी सब भी बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए इधर उधर देखने लगे और अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ शिविका के केबिन के अंदर करण शिविका के सामने अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधकर एकदम चुपचाप खड़ा हुआ शिविका के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ सोचते हुए शिविका ने कहा, प्लीज सिट डाउन। नो आई एम फाइन मैम, बोलते हुए करण ने मैम शब्द पर ज्यादा जोर दिया। उसके इस तरह बोलने पर शिविका समझ गई कि करण जरूर उससे नाराज है, और वो नाराज भी होगा क्योंकि शिविका ने बिना किसी वजह के ही इस तरह तेज आवाज में सबके सामने उस पर चिल्लाया था। इसलिए शिविका ने एक गहरी सांस भरकर इधर उधर देखते हुए बोली, लुक आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू बी हार्श ऑन यू, बट तुम क्यों लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहते हो? आज हमें इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और तुम्हें अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। उसकी इस बात पर करण ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम ठंडी आवाज में बोला, हमारे नए क्लाइंट मिस्टर मेहरा के साथ आपकी 2 बजे लंच मीटिंग है यहाँ के सबसे बड़े आलीशान 5-स्टार रेस्टोरेंट Cloud 9 में, और उन्हें हमारे डिजाइन पसंद आ गए हैं, लेकिन डील फाइनल करने से पहले वे एक बार कंपनी के CEO से मिलना चाहते हैं। करण ने सब कुछ एकदम सही सही और विस्तार से बताया। उसकी बात सुनकर शिविका का मुंह खुला का खुला रह गया। क्रमशः